घनेरे घन श्याम सवरिया मेरे
ओ मेरा कोई ना सहारा मेरे घन श्याम सवरिया मेरे
ओ घन श्याम सवरिया मेरे
ओ घन श्याम सवरिया
ऊपर करके राधे
राधे।
तो महाराज अब इस तरह से भगवान वाम नाप दिया है, फिर इंद्र को उनकी इंद्रपुरी वापस दी जाती है, तीनों लोक वापस दे दिए हैं। अब यहां पर कथा आती है इक्ष्वाकु वंश की, जिसमें राजा नभग हुए, राजा नभाव हुए, राजा अम्बरीश हुए। तो राजा अम्बरीश की कथा आती है कि जो राजा अम्बरीश थे, बहुत बड़ा राजपाट है, सब कुछ है, धन दौलत भी बहुत है, लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। मतलब यहाँ तक कि जो भगवान का मंदिर है उसमें स्वयं झाड़ू लगाते हैं। तो सोचते हैं पता नहीं किसका मन कैसा हो, इसलिए वो स्वयं ही झाड़ू लगाते हैं। यहाँ तक कि भगवान के लिए जो प्रसाद तैयार करते हैं वो भी खुद करते हैं। पता नहीं कौन किस मन से तैयार करे, क्योंकि महाराज आप जिस मन से भोजन बनाते हो उसका असर जब व्यक्ति उस भोजन को ग्रहण करता है तो उसके मन पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। बात बिल्कुल सच है। इसलिए कहते हैं कभी भी जब भोजन बनाए तो मन अच्छा होना चाहिए। तो राजा अम्बरीश भी यही सोचते हैं, पता नहीं कौन किस मन से भोजन बनाए, इसलिए भगवान के लिए प्रसाद भी वही तैयार करते हैं। तो एक बार की बात है कि राजा अम्बरीश चक्की चला रहे थे, तो चक्की चलाते चलाते पसीना आ गया है, तो एकदम से ऐसा महसूस होता है, एहसास होता है कि पीछे कोई दिव्य शक्ति खड़ी है, उन्हें दिव्य सुगंध आती है। तो जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो भगवान साक्षात उन्हें हवा दे रहे हैं। राजा अम्बरीश कहते हैं प्रभु ये क्या कर रहे हो, अरे हम आपके दास हैं, आप क्यों सेवा कर रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि देखो आप इतने बड़े राजा हो, इतनी सेवा करते हो मेरी, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूं कि आपको हवा दे दूं, पंखा कर दूं। राजा अम्बरीश कहते हैं आप ऐसा कुछ मत करिए। तब महाराज भगवान राजा अम्बरीश से कहते हैं कि आज आपको मैं एक वचन देता हूँ, ये जो मेरा सुदर्शन चक्र है, अब जब भी आप पर संकट आएगा ये सुदर्शन चक्र अपने आप चला आएगा। इस बात को काफी दिन हो गए हैं, तो राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी का दिन आता है महाराज, तो राजा अम्बरीश संध्या के समय जा रहे थे भ्रमण के लिए, तो नजर पड़ती है सामने से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे। तो सोचते हैं कि क्यों ना मैं दुर्वासा ऋषि से भी कह दूं कि जब मैं रात्रि के समय अपने व्रत को खोलूंगा, दुर्वासा ऋषि भी वहां पर आएंगे, बहुत पहुंचे हुए ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं। तो राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि से कहते हैं कि आज मेरा एकादशी का व्रत है, मैं चाहता हूं कि जब मैं व्रत खोलूं तो आप भी वहां पर रहो। दुर्वासा ऋषि कहते हैं ठीक है, अभी तो काफी समय है, जब तक आप भी अपने काम कीजिए मैं भी पूजा पाठ करके आता हूँ। तब महाराज अब वो समय हो चुका है जब दुर्वासा ऋषि को उन्होंने निमंत्रण दिया था आने के लिए। काफी समय हो गया है, दुर्वासा ऋषि आ ही नहीं रहे हैं, बाकी ब्राह्मण आ चुके हैं, बस इंतजार हो रहा है दुर्वासा ऋषि का कि कब दुर्वासा ऋषि आएंगे, क्योंकि दुर्वासा ऋषि भगवान की पूजा में लीन हो गए। कि मन से ये बात चली गई है कि उन्हें जा करके राजा अम्बरीश का व्रत खुलवाना है। राजा अम्बरीश काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अब हाल ये है कि कुछ समय बाद दूसरा दिन लगने वाला है। तब सारे ब्राह्मण कहते हैं राजा अम्बरीश से कि देखिए आप कुछ तो ग्रहण कीजिए, क्योंकि यदि दूसरा दिन लग गया तो आपके व्रत रखने का कोई मतलब नहीं है, फिर आप हमें भोजन भी कराओगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो ना चाहते हुए भी राजा अम्बरीश अपने मुख में तुलसी पत्र रखते हैं। अब यहाँ पर उनके मुख में तुलसी पत्र रखना हुआ, वहां से दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। राज दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी ब्राह्मण है, बहुत जल्दी क्रोध आता है, छोटी छोटी बात पर क्रोध आ जाता है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया है। क्रोध में आकर के कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का सम्मान करना नहीं आता है, बुलाते क्यों हूं? इंतजार करना नहीं आता है तो बुलाते क्यों हूं? अरे मैंने तो कहा नहीं था मुझे बुलाओ, तुम ही मेरे पास आए थे, तुम ही ने बुलाया, तो इससे अच्छा बुलाते नहीं मुझे। अब महाराज राजा अम्बरीश कुछ नहीं कह रहे हैं। दुर्वासा ऋषि इतने क्रोध में हैं कि अपने एक जटा को खोलते हैं, उसमें से कृत्या नामक राक्षसी निकलती है, उससे कहते हैं जाओ जाकर के राजा अम्बरीश का वध कर दो। राक्षसी जाती है तो राजा अम्बरीश के पीछे से सुदर्शन चक्र निकलता है, उस कृत्या नामक राक्षसी को मारता है। अब वो सुदर्शन चक्र पीछे पड़ गया है दुर्वासा ऋषि के। अब महाराज दुर्वासा ऋषि घबरा रहे हैं, दुर्वासा ऋषि आगे आगे भाग रहे हैं, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे आ रहा है। दुर्वासा ऋषि भागते जा रहे हैं, इतने घबरा गए हैं कि सीधे भगवान के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं प्रभु अपने इस चक्र को रोको, वरना थोड़े ही समय में मुझे मार देगा। भगवान कहते मैं नहीं जानता इसको कैसे रोकना है, अरे वो तो जिस भक्त पे संकट आया है उससे जाकर के पूछो ये कैसे रुकेगा, क्योंकि केवल ये मेरे भक्त जानते हैं कि सुदर्शन चक्र को कैसे रोका जाता है। तब महाराज दुर्वासा ऋषि फिर से भागे भागे आते हैं, राजा अम्बरीश से क्षमा मांगने लगते हैं, कहते हैं आप मुझे क्षमा कर दो, पर सबसे पहले इस सुदर्शन चक्र को रोको। तब महाराज राजा अम्बरीश उस सुदर्शन चक्र को रोकते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि आप मुझसे क्षमा मत मांगिए, आप तो बहुत पहुंचे हुए ब्राह्मण हैं, जानता हूँ क्रोधी ब्राह्मण जरूर हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप भी अपनी जगह सही हैं और मैं भी अपनी जगह सही हूँ। तब महाराज दुर्वासा ऋषि बार बार क्षमा मांगते हैं, तब राजा अम्बरीश कहते हैं कि देखिए आप बार बार क्षमा मत मांगिए, मुझे छोटा मत कीजिए, आइए मिलकर के भोजन करते हैं। तो इस तरह से राजा अम्बरीश की कथा आती है, मतलब राजा अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अब इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा दशरथ होते हैं। अब महाराज जैसा सभी जानते हैं कि राजा दशरथ की तीन रानियाँ थीं, लेकिन किसी को भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो इसलिए वो जाते हैं ऋषि मुनियों के पास। ऋषि मुनियों से कहते हैं, ऋषि मुनियों से कहते हैं कि देखिए हमें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई उपाय बताइए। तब ऋषि मुनि कहते हैं एक यज्ञ कीजिए, उस यज्ञ में से जो फल स्वरूप निकले अपनी तीनों पत्नियों को ग्रहण करवा देंगे। कहते हैं ठीक है, अब महाराज राजा दशरथ आते हैं, उस यज्ञ को करवाते हैं, तो उसमें से फल स्वरूप खीर का पात्र निकलता है, तीनों रानियों को दे दिया जाता है, कौशल्या माता, केकई माता, सुमित्रा माता, तीनों को दे दिया है। लेकिन जो केकई माता है वो उसे खिड़की पर रख देती है। तो उतने में एक कौआ आता है, उस पात्र को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। तो जब रास्ते में वो देखता है कि पहाड़ पर बैठ करके माता अंजनी तपस्या कर रही थी, तो उसका जो पात्र है वो टेढ़ा हो जाता है। तो पात्र जैसे ही टेढ़ा हुआ तो उस पात्र से खीर गिरती है और वो माता अंजनी के मुख में चली जाती है और फल स्वरूप हनुमान जी महाराज जन्म लेते हैं। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी जन्म लेते हैं। अब महाराज ये बात दोनों रानियों को पता चलती है कि केकई माता का जो पात्र है खीर का वो एक कौआ लेकर के चला गया है। तो वो दोनों अपने हिस्से की कुछ खीर उन्हें दे देती हैं। अब तीनों रानियाँ खीर ग्रहण करती हैं। जैसा ऋषियों ने कहा था कि फल स्वरूप तीनों रानियाँ गर्भवती होती हैं। अब देखिए प्रभु श्री राम के जन्म लेने का समय निकट आ रहा है। तो जब प्रभु जन्म लेते हैं अलग वातावरण होता है, सारे देवी देवता आनंदित हैं, क्योंकि भगवान कभी भी पूरे नौ महीनों में जन्म नहीं लेते, वो नौ महीने पूरे होने से कुछ समय पहले जन्म लेते हैं। तो प्रभु श्री राम के जन्म लेने का समय निकट आ रहा है। अब रामचरितमानस में भी कहा गया है क्या,
नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता।
राम के जन्म लेने का समय आ चुका है। चैत मास की शुक्ल पक्ष की नौमी को अभिजीत नक्षत्र में अयोध्या में राजा दशरथ के घर प्रभु श्री राम जन्म लेते हैं। तो बोलिए श्री रामचंद्र की
हो।
तो मरा, अब प्रभु श्री राम ने जन्म ले लिया है। देखिए अभी ये बात किसी को पता नहीं है कि उन्होंने जन्म ले लिया है, केवल और केवल कौशल्या माता को पता है कि प्रभु श्री राम ने जन्म ले लिया है। इसलिए कहा भी जाता है कौशल्या हितकारी। तो भगवान कहते हैं कि आपने कहा था ना कि मैं आपके घर जन्म लूँ, पूर्व जन्म में आपने तपस्या करी थी तो आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ था, तो मैंने कहा था कि चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव, इसलिए मैंने आपसे कहा था आपके घर में मैं अवतार लूंगा, जन्म लूंगा, आप सरिस खोजम कहाँ जाई, नप तप तने हो मैं आई। इसलिए आपके घर में मैं जन्म ले चुका हूँ। मैया कहवे जन्म लिया वो तो ठीक है, पर कहा था मैंने कि आप पुत्र बन के आना, आप तो पिता बन करके आ गए हो। मैया कहती इतना बड़ा पुत्र नहीं होता, आप तो 20 फुट के हो, छोटा सा बालक होता है। भगवान कहते मैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे मेरा ये स्वरूप है, आप पुत्र मानो तो पुत्र हूँ, पिता मानो तो पिता हूँ। मैया कहती है बात ठीक है, पर कभी भी संसार में इतना बड़ा बालक नहीं होता, छोटे हो जाओ। मैया कहती है सबसे पहले तो ये शंख चक्र गदा पद्म जो धारण करे हैं इनको त्याग दो। कहते हैं ठीक है, त्याग दिए। मैया कहती है छोटी हो जाओ। भगवान कहवे छोटा क्यों होना, ऐसे ही ठीक है। मैया कहवे छोटा होना जरूरी है। प्रभु कहते हैं ठीक है, अब महाराज भगवान छोटे से हो गए हैं। मैया कहवे देखो 4 हाथ के पुत्र नहीं होते, 2 हाथ कम कर। भगवान कहवे ठीक है 2 हाथ कम कर लेते हैं, तो 2 हाथ कम कर लिए। मैया कहवे कि देखो बच्चे जो होते हैं वो निर्वस्त्र होते हैं, वस्त्र त्याग दो। भगवान कहवे क्या चल रहा है आपका, कभी कहो छोटा हो जाओ, छोटा हो गया, कभी कहती हो 2 हाथ त्याग दो, त्याग दिए, अब कह रही हो निर्वस्त्र हो जाओ, अरे कितना परेशान करोगी मुझे। मैया कहती है कि देखिए प्रभु पुत्र ऐसे ही होते हैं। अब माता क्या कहती है,
माता पुनी बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा,
माता पुनी बोली सोमती डोली तजहु तात
परम अनुपा,
कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला हे सुख परम अनुपा।
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा,
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना सुर भूपा।
ये चरित जे गा वही हरि पद पा वही तेना पर हिम भव कूपा,
ये चरित जो गा वही हरि पद पा वही तेना पर
यह रूपा।
माता पुनी बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा,
कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम।